मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 11 जुलाई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में दो दिनों के गैप के बाद आज फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, और इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 8-9 जवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं रजनीश कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अभिलाष झा खैरागढ़ डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, विनीत कुमार बीकानेर राजस्थान से, राहुल कुमार बोकारो झारखंड से, नम्रता ठाकुर बैतूल मध्य प्रदेश से, योगेश बीकानेर राजस्थान से, विनय कुमार राउत उड़ीसा से और नीलम देवी फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। तो रजनीश, अभिलाष, विनीत, राहुल, नम्रता, योगेश, विनय और नीलम, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी एक हमारे दोस्त हैं नीरज दुर्गावाल जो उत्तराखंड से हैं, दुर्गापाल, उन्होंने अभी उत्तराखंड का प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है और इसके लिए उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। तो नीरज, इस सफलता के लिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आप आगे भी सफलता हासिल करते रहें, इससे भी बेहतर सफलता हासिल करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट पर और मुझे यकीन है कि पिछले जो दो दिन हैं आपके बड़े खुशनुमा रहे होंगे और स्पेशली एक ऐसे समय में जबकि मौसम भी बहुत खुशनुमा है, आकाश में आपको बादलों की धक्का मुक्की दिखाई दे रही होगी, ऐसा लगता है जैसे कि हाथी के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो रहे हों, या कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे रूई के बड़े बड़े गोले तैर रहे हों आसमान के ऊपर। बड़ा खूबसूरत दृश्य होता है, चारों ओर भीगा भीगा सा माहौल, धरती अब हरियाली की चुनरी भी लगभग लगभग ओढ़ने की तैयारी में है। तो डेफिनेटली इस खुशनुमा माहौल ने आपके दो दिनों को अतिरिक्त रूप से ऊर्जावान बनाया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मित्रों, मेरे एक चौथे बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है आज के लाइफ मैनेजमेंट में, मैं उसी प्रश्न को आप सबके लिए उठा रहा हूं। दरअसल वो जो अभी 15 दिनों की क्लासेस में जब वो आई थी तो उन्होंने जो भी क्लास का माहौल देखा होगा जिस तरीके से भी, तो उन्होंने मुझे देखा, हमारे जो गेस्ट फैकल्टीज आते हैं उनको भी देखा, स्टूडेंट्स को भी वॉच किया, पूरी सारी स्थितियों को देखने के बाद उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है और मैं समझता हूं कि वो सवाल भले ही उन्होंने खड़ा किया हो लेकिन है वो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट। और सवाल ये है कि डेफिनेटली जब कुछ क्लासेस में कुछ बातें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन स्वाभाविक है कि कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर। और शायद चूंकि सारी चीजें नहीं के बराबर होती हैं तो उसमें फिर अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है ना, जैसे बहुत ही कूल काम माहौल है, एकदम शांत माहौल है, लेकिन छोटा सा भी पत्थर का टुकड़ा अगर फर्श पर गिर जाए तो उसकी आवाज गूंजने लगती है। ठीक, शायद वही स्थिति उन्होंने भी महसूस की होगी। तो उन्होंने जो सवाल पूछा है वो ये कि सर, एक दो घटनाएं उन्होंने बताई हैं कि उस डिस्टर्बेंस के बावजूद, जबकि आपको थोड़ा नाराज होना चाहिए, मैंने देखा कि आप बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए और अपना पूरा संतुलन बनाए रखा आपने और आपकी आवाज ज्यों की त्यों बनी रही। ठीक यही बात उन्होंने हमारे एक गेस्ट फैकल्टी के बारे में भी कही है, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जो हमारे देश के रिनाउंड समीक्षकों में माने जाते हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, वो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में स्टूडेंट्स को एड्रेस करने आए थे, और उन्होंने जो इंडियन फिलॉसफी आर्ट कल्चर को पूरी तरह से एक में शामिल करके एक अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को दी थी। तो उन्होंने लिखा कि वो भी उतने ही शांत थे, उनको भी कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं हुआ और सब चीजें एज इट इज चलती रही, जबकि मुझे गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सिचुएशन है, मैंने जानबूझ करके इस सिचुएशन की बात आप लोगों के सामने रखी है ताकि चीज आपको मालूम हो कि मैं किस पृष्ठभूमि में अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि मित्रों याद रखिए कि जब संदर्भ बदलते हैं तो उसकी समीक्षाएं भी बदल जाती हैं, है ना। जो आपकी समीक्षाएं होनी चाहिए, जो आपकी बात होनी चाहिए, वो संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर के कुछ बात करेंगे तो फिर वह उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाती, सच पूछे तो उसके अनुकूल ही नहीं रहती, वो प्रैक्टिकल ही नहीं होती है। इसलिए मैंने आपको जानबूझ करके ये संदर्भ बताया है। अब देखें कि इसके पीछे कौन सी बात काम करती है ना। मैं सीधे सीधे बहुत ही व्यावहारिक उस पर मुद्दे पर आता हूं। मैं आपसे कोई बहुत साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच पूछे तो आपसे बहुत ही व्यावहारिक जीवन की बात कर रहा हूं। दोस्तों होता यह है हम सबके साथ, चाहे आप हों, मैं हूं या कोई भी थर्ड पर्सन हो, इनफैक्ट बहुत ही सूक्ष्म रूप में हम सब अपने ईगो में जीते हैं। हम सब अपने अपने दिमाग में अपनी अपनी एक तस्वीर को लिए हुए जी रहे हैं। हमने अपनी एक इमेज बना ली है और उस इमेज के अनुकूल हमने उसकी सारी डिटेलिंग कर ली है, और डेफिनेटली जो भी हमने इमेज बनाई है उस इमेज के केंद्र में होता है हम सबका अपना ईगो। ये किसी एक की बात नहीं है, ये सबके साथ है। इसे हमें, मुझे लगता है कि ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिसको ये लगता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है तो उसको अपने इस निष्कर्ष पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात अलग है कि वो हर समय सामने नहीं आता है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है, जैसे कि अभी बरसात के दिनों में सांप आपको सड़कों पर चलते हुए दिखाई देंगे, सांप तो पहले भी थे लेकिन अब उनको मौका मिल गया है तो वो बाहर आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से वो जो ईगो का जो सर्प है वो मौके मौके पर बाहर आता है। तो होता यह है फ्रेंड्स कि जब भी हम कहीं भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, आंसर देते हैं, किसी से बात व्यवहार करते रहते हैं, तो ये जो हमारा ईगो है या हमारे दिमाग में जो एक सेल्फ इमेज का जो इम्प्रेशन बना हुआ है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़े रूप में प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट होता रहता है, वो इंटरफेयर करता रहता है, लगातार उसके हस्तक्षेप जारी रहते हैं। जब वो हस्तक्षेप करता रहता है तो स्वाभाविक है कि हमारे दिमाग से सारे संदर्भ गायब हो चुके होते हैं और उसकी जगह पर हम अपने आप को स्थापित कर देते हैं, हम एस्टैब्लिश हो जाते हैं। सच पूछे तो पहले से ही एस्टैब्लिश रहते हैं लेकिन हम दूसरों को उसकी जगह पर नहीं आने देते, यहां तक कि संदर्भ को भी नहीं आने देते। इसलिए मैंने अभी आपसे उस संदर्भ की बात, उस सिचुएशन की बात की। अब होता यह है फ्रेंड्स कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, याद रखिए, वो चैलेंज होता है कि हम खुद को कितना रिप्लेस कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब हम किस तरीके से, किस सीमा तक, कितनी बार और कितनी जल्दी भी हम अपने को वहां से हटाकर और दूसरे को ला पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं या डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, डेफिनेटली मैं यहां हूं, लेकिन मेरे सामने हर वक्त एक चैलेंज ये रहता है कि मैं तो हूं लेकिन मैं किसके लिए हूं, मैं स्टूडेंट्स के लिए हूं। तो मुझे अपने को वहां से हटाना पड़ेगा, मुझे अपने को हटाना पड़ेगा और आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए हूं, अगर आप नहीं हैं तो मैं नहीं हूं, फिर मैं जो कुछ भी हूंगा वो दूसरों के लिए हूंगा, और फिर दूसरों के जब के लिए जब होऊंगा तब भी उसी तरह की सिचुएशन आएगी कि मैं फिर अपने को हटा करके उनको लेकर आऊं, और ये चैलेंज जिंदगी भर चलता रहता है। तो मित्रों जैसे कि अब क्लास की बात आई और जो भी सिचुएशन उस समय होती है, तो डेफिनेटली जो भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, थोड़े से गंभीर किस्म के होते हैं या जिंदगी को समझते हैं या थोड़े से ईगो के साथ खेलना जानते हैं वो कि ठीक है तुम यहां पर अपना करिश्मा दिखा रहे हो तो मैं तुम्हारे इस चाल को समझ रहा हूं और मैं अपने हिसाब से तुमको कंट्रोल करके चलूंगा। तो वो करते यही है मित्रों कि उस समय वो अपने को वहां से हटा देते हैं और दूसरे को ले आते हैं, सामने वाले को ले आते हैं। और जब सामने वाले को ले आते हैं तो सारा संदर्भ बदल जाता है, सारा संदर्भ बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास की बात ही है तो बट नेचुरल है कि अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो मुझे ये सोचना पड़ेगा और सोचना ही चाहिए कि मैं किनकी क्लास ले रहा हूं। वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20, 22, 24, 25, 26 साल की जिनकी उम्र है, जिनके पास अभी जीवन का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, जो तनाव में हैं, दबाव में हैं, जो जूझ रहे हैं अपने कैरियर के लिए, राइट, जिनमें जबरदस्त रूप से ऊर्जा भी भरी हुई है। तो मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं और ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे उनके हिसाब से उन सारी घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपने को रिप्लेस करके उनको लाना पड़ेगा और फिर मुझे घटनाओं को देखना पड़ेगा। और यदि मैं वहां अपने को ही लादकर घटनाओं को देखता रहूंगा तो डेफिनेटली मैं अपना बैलेंस खो दूंगा। दोस्तों, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाकर के इसको महसूस करेंगे, चाहे आप कलेक्टर बन जाइए, कमिश्नर बन जाइए, चीफ मिनिस्टर बन जाइए, कोई मिनिस्टर बन जाइए, चाहे आप अरबपति खरबपति बन जाइए, चाहे आप घर के सामान्य पति बने रहिए, याद रखिए कि जिस रूप में भी आप होंगे, सबसे बड़ा जो रोल होगा आपकी जिंदगी में, आपकी सफलता में, आपकी प्रसिद्धि में और आपके आनंद में, वो इस बात का होगा कि आप किस सीमा तक, किस हद तक अपना बैलेंस बनाकर रख पाते हैं। और इस बैलेंस की परीक्षा होती कब है? बैलेंस की परीक्षा सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती। सामान्य परिस्थितियों में तो बैलेंस रहता ही रहता है। समुद्र की परीक्षा तो उस समय होती है जब तूफान आने को, या कह लीजिए कि नाविक की परीक्षा उस समय होती है जब तूफान आ रहा हो। शांत समुद्र में तो आप बड़े आराम से नाव खे सकते हैं, क्योंकि बैलेंस तो बाहरी यही सारी चीजें डिस्टर्ब करेंगी, तो फिर आप कितना कंट्रोल बनाकर रख सकते हैं। और दोस्तों, हर जगह तो बैलेंस ही है। राग क्या है, धुन क्या है, कविता क्या है, आप बताइए। मार्च पास्ट की जाती है वो क्या है, नृत्य क्या है। आपको नहीं लग रहा है कि अलग अलग तरह का ये बैलेंस ही तो है? और जिसकी आजकल बहुत चर्चा है योगा, वो क्या है? जहां भी आप देखेंगे बैलेंस, सौंदर्य ही बैलेंस का होता है। एक बहुत खूबसूरत कोई व्यक्ति हो, बहुत खूबसूरत कोई महिला हो, जिसे आप बहुत सुंदर, आप कल्पना कर लीजिए और उसकी नाक एकदम तोते की तरह निकाल दीजिए, या गर्दन पता लगा कि एकदम उसके धड़ से चिपका दीजिए, और हाइट उतनी ही रखिए जितना आपने किया है। मान लीजिए 5.5 फीट की हाइट आपको स्मार्ट लगती है तो 5.5 फीट की रखिए, आदमी की हाइट 6 फीट कर दीजिए, लेकिन गर्दन को उसके धड़ से सटा दीजिए, मतलब गर्दन दिखे ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा? उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का जो बैलेंस होना चाहिए, देह का जो संतुलन होना चाहिए, वो संतुलन वहां से गायब है। मित्रों, अब आप इसी बात को पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में जो टकराव है, जो द्वंद है, उससे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोग खुद को रिप्लेस करके नई पीढ़ी को नहीं आप ले पाते, वो उनके हिसाब से चीजों को नहीं देख पाते, और यही गलती नई पीढ़ी के लोग करते हैं। नई पीढ़ी के लोग खुद को रिप्लेस करके वो पुरानी पीढ़ी को अपने अंदर नहीं ले पाते। पुरानी पीढ़ी समझती है कि हमारे पास जीवन के अनुभव हैं, और समझती ही नहीं है बल्कि वो सही भी है। नई पीढ़ी समझती है कि नहीं, हम ज्यादा जानते हैं, हमको नया एक्सपीरियंस है, हम मॉडर्न हैं, ये तो ओल्ड हो चुके हैं, ये बीते हुए लोग हैं, तो पुरानी बातें कर रहे हैं, उनको इस बात का कह लीजिए कि इल्म है। नतीजा ये होता है कि दोनों के बीच टकराव लगातार बना रहता है। अगर पुरानी पीढ़ी अपने को रिप्लेस करके थोड़ी नई पीढ़ी को जगह दे दे, और नई पीढ़ी अपने को रिप्लेस करके थोड़ी सी पुरानी पीढ़ी को जगह दे दे, दोनों अगल बगल में बैठ जाएं, संतुलन हो जाए, बात खत्म हो गई। तो याद रखिए कि दोस्तों, जो सारा संतुलन निभाने का जो काम होता है वो हमारे ऊपर होता है, और हम ही को इसे पूरा करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है वो आप हैं। बाहर के वातावरण में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो अपने ढंग से काम करती ही रहेंगी और चीजें होती ही रहेंगी। मित्रों, अब इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं अब बशीर बद्र जी की फिर से दो खूबसूरत पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं, दो लाइनें हैं केवल। इस रुमाल को काम में लाओ, अपनी पलकें साफ करो, मैला मैला चांद नहीं है, धूल जमी है पलकों में। इस रुमाल को काम में लाओ, अपनी पलकें साफ करो, मैला मैला चांद नहीं है, धूल जमी है पलकों में। तो दोस्तों, समस्या चंद्रमा के साथ नहीं है, समस्या हमारी पलकों के साथ है और प्रकृति ने हमें रुमाल भी दे रखा है। बस हाथ उठाकर उस रुमाल को पलकों तक ले जाना है, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, अब लाइफ मैनेजमेंट के बाद अब मैं आता हूं आज के AIR न्यूज पर। और आज के AIR न्यूज में सच पूछे तो मेरे पास बातें करने के लिए भी बहुत हैं और पेपर्स की क्लिपिंग्स भी बहुत हैं और समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी चलिए जो भी चीजें जितनी कवर कर सकेंगे उतनी कवर करेंगे। और कुछ सैद्धांतिक बातें भी मैं आज आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाह रहा था, लेकिन देखता हूं अगर वक्त मिला तो आज, नहीं तो फिर बाद में कभी, सही। लेकिन उस पर बात हम लोग करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपने न्यूज में सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी की अफ्रीका यात्रा पूरी हो गई है, जिसमें वो चार देशों की यात्रा पर गए और चार देशों के नाम आपको मालूम है। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं, नो डाउट, जैसा कि आप लोगों के ईमेल से पता लगता है, सराहते भी हैं, लेकिन उसको इनफैक्ट उपयोग में कितना लाते हैं, प्रैक्टिकली उसको कितना ला रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। कितने लोग ला रहे हैं ये भी मैं नहीं जानता। हां, कुछ लोग तो ला रहे हैं, इतना तो मैं जानता हूं। तो मित्रों, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो अफ्रीका की चारों देशों की यात्रा जो हो रही है, तो प्लीज आप उसे मैप पर देखें। मैप पर देखने की बात मैं जानबूझकर किसी पर्पज से कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्री एग्जाम अभी आपका होना है और उसमें मैं एक क्वेश्चन कॉइन करता हूं, मैं उसमें एक क्वेश्चन बनाता हूं प्रधानमंत्री की इसी अफ्रीका यात्रा पर। याद रखिए कि सिविल सर्विस में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं कि निम्न में से किन देशों की यात्रा नहीं की है या किन किन देशों की यात्रा की है, उस समूह को पहचानिए, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। समूह को पहचानिए जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो तब आएंगे जब एग्जाम 6 महीने के बाद हो, क्योंकि यूपीएससी इस बात को जानती है कि अगर अभी मैंने तुरंत पूछ लिया तो वो आपके दिमाग में रहेंगी ताजा, तो आप इसका उत्तर दे लेंगे, तो वही प्रश्न सरल हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद एग्जाम होगा तो जानते हैं कि तब तक इसमें घपला हो चुका होगा, चीजें मिक्सअप हो चुकी होंगी, तब वो दे देगा। इसलिए मैंने आज की बात कही, मैं आज अगर एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं और उसमें मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मित्रों मान लीजिए कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीका महाद्वीप के चार देशों की यात्रा की है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के किन क्षेत्रों को कवर किया है, और मैं आपको चार विकल्प दे दूंगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, राइट। और इसके बाद फिर मैं ग्रुप बना दूंगा नीचे कि पूर्व और पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, पूर्व पश्चिम और दक्षिण, इस तरह के मैं फिर उसमें ग्रुप बना दूंगा, राइट। अब आप बताइए कि क्या करेंगे, आप कैसे इसका उत्तर देंगे? क्या किसी अखबार में आपको ये लाइन पढ़ने को मिली? बिल्कुल नहीं मिली है आपको, कहीं नहीं मिली है। केवल एक ही थोड़ा सा क्लू आपको न्यूज में मिला है, अगर आपने ध्यान दिया हो। और सच पूछे तो जब हम न्यूज पढ़ते हैं व्यावहारिक रूप में, हम उस क्लू को नहीं पकड़ पाते, यह भी उतना ही सच है, क्योंकि इतना ध्यान से कोई भी न्यूज सुन ही नहीं सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो मोजाम्बिक है वो भारत के लिए अफ्रीका महाद्वीप का प्रवेश द्वार है, राइट। इससे थोड़ा सा क्लू आप निकाल सकते हैं कि अगर भारत सच में, इसका मतलब हुआ कि अगर अफ्रीका महाद्वीप में जाना है, यात्रा करनी है, और कोई इंडिया से चलेगा तो हिंद महासागर को पार करके सबसे पहले फिर वो अफ्रीका महाद्वीप की किस दिशा को टच करेगा, बट नेचुरली कि पूर्व दिशा को करेगा। तो पूर्व दिशा में घुसा भारत से कोई भी गया हुआ व्यक्ति, या कह लिए हमारे प्रधानमंत्री गए और पूर्व दिशा में अफ्रीका के घुसे और उन्होंने कहा कि मोजाम्बिक उसका प्रवेश द्वार है, तो मतलब हो सकता है कि मोजाम्बिक पूर्व दिशा में हो सकता है कि बात मैं कह रहा हूं अभी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया है न्यूज में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आपको एक क्लू मिल गया, अब उस क्लू के आधार पर अब आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। फिर आप अब दूसरा क्लू देखिए, कॉमन सेंस की मैं बात बता रहा हूं। दूसरा वो दूसरे देश में वो गए दक्षिण अफ्रीका, अब नाम ही है दक्षिण अफ्रीका, तो सीधी सी बात है इतना कॉमन सेंस तो आप सब में है ही कि यह अफ्रीका का दक्षिण भाग होगा। तो मोजाम्बिक पूर्व हो गया, दक्षिण अफ्रीका दक्षिण में हो गया, यानी कि पूर्व और दक्षिण तो वो गए हैं, इतना तो पक्का हो गया। अब प्रॉब्लम रह गई तंजानिया और केन्या की, आपको नहीं मालूम है कि ये कहां है, तो या तो जो समूह बनाए गए हैं जो जिसको हम कूट कहते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद होता है सिविल सर्विस के पेपर में कूट, उस कूट के आधार पर अगर आप पूर्व और दक्षिण को पक्का समझ करके उत्तर तक पहुंच सकते हैं तो ये तो एक ट्रिक हो सकती है, और हो सकता है कि यूपीएससी इसमें आपकी मदद करे, वो फिर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखती है। अदरवाइज क्या करना चाहिए मित्रों, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी मेरी इस बात पर यकीन करते हुए एक्शन लिया होगा कि आपको अखबार आपको एटलस देखना चाहिए, नक्शा देखना चाहिए, अगर आपने ऐसा किया है तो जैसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा है आपके ओंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई होगी, मालूम है किस बात की, अच्छा सर क्या है आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी कोई प्रश्न है, क्योंकि आपने मैप देखा है और मैप देखने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सब तो बिल्कुल पास पास ही है, मोजाम्बिक के बिल्कुल ईस्ट में ही है, लेकिन मोजाम्बिक के थोड़ा सा ऊपर आप चले जाएंगे तो वहीं पर आपको तंजानिया दिखाई देगा और तंजानिया की सीमा ही है केन्या, ये तीनों देश कह लीजिए कि ऑलमोस्ट लगे हुए ही हैं, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में जरूर दूसरे एक दो देश हैं, अदरवाइज हैं सभी के सभी ईस्ट में, और स्पेसिफाई करेंगे तो मोजाम्बिक जो है ना साउथ ईस्ट पड़ जाएगा, केन्या तो बिल्कुल मिडिल ईस्ट पड़ जाएगा, लेकिन उस तरह के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल यूपीएससी नहीं पूछता है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन को आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, अभी आप इंडियन फॉरेन सर्विस में नहीं गए हैं कि आपको एकदम सा चीजें एक पता हूं। तो मित्रों जैसे ही आप मैप देखते हैं आप देखें कि आपके लिए कितना सरल हो जाता है, तो अगर आपने मैप देख लिया है और तब आप सही उत्तर तक पहुंच रहे हैं, देखिए अब दो सिचुएशन होगी, या पहले जो मैंने उपाय बताया उसके माध्यम से आप उत्तर तक पहुंच रहे हैं, दोनों माध्यम से आप पहुंच सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी एक बहुत बड़ा फर्क है, इस फर्क को इग्नोर आप मत कीजिए। आप अगर मैप देख लेते हैं तो इसी प्रश्न का उत्तर आप विद इन 30 सेकेंड्स दे देंगे, 30 सेकेंड्स, और अगर आपने मैप नहीं देखा है और जो आप कैलकुलेशन लगाएंगे कि अच्छा मोजाम्बिक प्रवेश द्वार और दक्षिण अफ्रीका, तो उसमें इसी का उत्तर देने में आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको समय लगेगा, और आपको मालूम है कि इस परीक्षा हॉल में आपके लिए समय बहुत अमूल्य धरोहर है। तो मित्रों तैयारी करने के ये कुछ उपाय होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, अगर आप इनको लेकर के चलते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सिविल सर्विस आपके लिए न केवल आसान ही हो जाती है बल्कि सच पूछे तो काफी कुछ मजेदार भी हो जाती है, काफी मजेदार हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब अफ्रीका यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी की खत्म हो गई है, आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ आर्टिकल्स आपको अफ्रीका महाद्वीप पर आपको प्रोवाइड किए हैं। अब आप देखें कि आपको बहुत दिमाग में आपके बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस पर किस तरह के प्रश्न आएंगे, आप बहुत ज्यादा भयभीत मत रहिए, बहुत ज्यादा आशंकित मत रहिए कि जैसे कि चारों देशों के साथ भारत ने संधियां की हैं जाकर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं सारी, तो आपको मालूम होना चाहिए डिटेल में कि आप किन किन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, कहां कहां आपका किस तरीके से हस्ताक्षर हुए हैं, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनके बेसिक्स मालूम है उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। बस आपको अफ्रीका महाद्वीप की स्पेशलिटी मालूम होना चाहिए कि उस महाद्वीप की क्या अतिरिक्त विशेषताएं हैं। अदरवाइज आप जाकर के देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के जब किसी भी देश में जाते हैं तो हर जगह आपको कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बातचीत करते हुए मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश की रिक्वायरमेंट है तो उन्हीं पर बात करेंगे। जिसमें एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट यह होता है कि साहब जब हमारे प्रधानमंत्री गए हैं तो निवेश पर बात करेंगे, एफडीआई पर बात करेंगे, और ये दो तरफा होगा कि विदेश के लोग भारत में निवेश करें और भारत के लोगों को भी उनके देशों में निवेश करने का मौका मिले। ये एक ट्रेड है, ये एक बिजनेस है, व्यापार है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व का जो उदारीकरण है वो इसी पर आधारित है। फिर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी पर बात होती है, अगर वो यूरोप जाएंगे तो यूरोप में टेक्नोलॉजी की बात होगी ही होगी, क्योंकि यूरोप के पास हाई टेक्नोलॉजी है। बट नेचुरली कि अफ्रीका के पास उतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा मायने नहीं रखेगी, वहां नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा मायने रखेंगे, क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। और नेचुरल रिसोर्सेज में फिर हम जब बात करेंगे तो डेफिनेटली भारत के लिए भी ऊर्जा बहुत अहम मुद्दा है, तो ऊर्जा पर फिर बात होती है, बाजार पर तो बात होती ही है। कहीं भी जाएंगे हम सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व आतंकवाद, सच पूछे तो आतंकवाद भी कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है। इसके बाद फिर भारत चूंकि यूएनओ के सुरक्षा परिषद के लिए कोशिश कर रहा है तो वो सुरक्षा परिषद के लिए भी उनकी एक सहमति के लिए वो बात करेगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत बात करता ही करता है। अगर ये आपको बेसिक मालूम है तो आप इन बेसिक्स को पकड़ लीजिए और साथ ही आप उस कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को पकड़ लीजिए, उनकी ताकत को समझ लीजिए कि वो क्या देने की स्थिति में है और हम उन्हें क्या दे सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। और यही सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है, आपको इसी तरीके से इनकी तैयारी करनी भी चाहिए। एक बात और फ्रेंड्स आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, देखिए कि आपको हमारे सिलेबस में, सिविल सर्विस के सिलेबस में फ्रीडम मूवमेंट भी है, विश्व का इतिहास भी है। अगर आप विश्व का इतिहास उठा करके देखें, ट्वेल्थ की किताब में जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से विश्व के इतिहास को समझाया हुआ, उसमें आप अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको एक कॉमन इंप्रेशन आपका बन जाएगा। दूसरी चीज, साउथ अफ्रीका में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो आप देख रहे हैं कि डीडी चैनल कितने विस्तार के साथ उनके प्रोग्राम्स को दिखा रहा है, खैर प्रधानमंत्री है तो दिखाना ही है, लेकिन साउथ अफ्रीका पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि साउथ अफ्रीका को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी तीर्थ यात्रा का नाम दिया कि ये मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसी है। गांधी जी का फोनिक्स आश्रम गए, वो जिस जेल में गांधी जी 1906 में वो बंद कैद रहे थे वहां गए, इस तरह से कुछ स्थानों पर वो वहां गए और उनके उन्होंने दर्शन किए, बकायदे दर्शन ही कहना चाहिए अगर तीर्थ यात्रा है। तो इस तरीके से साउथ इंडिया और साउथ अफ्रीका और गांधी जी, इस पर भी एक प्रश्न बनता है। तो साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर आप श्याम बेनेगल की फिल्म देखेंगे मेकिंग इन महात्मा, तो गांधी जी को महात्मा जो बनाने का काम किया वो साउथ अफ्रीका ने किया है, उसी पर बेस्ड वो पूरी की पूरी फिल्म है, मैंने देखी है वो। और गांधी जी ने भी यही बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही कि एक घटना जहां पर कि उनको ट्रेन से उतारा गया था, तो उन्होंने कहा कि यहां तक एक व्यक्ति की यात्रा समाप्त हुई और महात्मा बनने की यात्रा शुरू हो गई। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि साउथ अफ्रीका ने ही गांधी जी को व्यक्ति से महात्मा की यात्रा के प्रारंभ करने का अवसर दिया, या उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या प्रयोग किए, इस तरीके का एक प्रश्न बन सकता है। और फ्रीडम मूवमेंट में आप देखते हैं कि गांधी जी पर लगभग सवाल आता ही है। तो इस तरीके से अब पीएम की जो अफ्रीका यात्रा, इसको केवल अफ्रीका के रिसोर्सेज तक सीमित रख करके आपको नहीं देखना है, बल्कि इसको हिस्ट्री में भी ले जाकर के आप इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो मित्रों, ये पीएम की अफ्रीका की यात्रा पर मैंने आप लोगों से कुछ बातें की हैं। अब दोस्तों, चूंकि उतना वक्त नहीं है तो मैं उन चीजों पर अब नहीं आ रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी दो तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान और दिला दूं। एक तो पीस चैनल जो है, आपने सुना कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं बांग्लादेश में, वो बैन कर दिया गया है उस चैनल को, और भारत में भी मांग हो रही है, बांग्लादेश ने कहा है कि नाइक के जो भाषण है उनको आप थोड़ा सा चेक कीजिए, क्योंकि नाइक भारत में रहते हैं। अभी बांग्लादेश में जो आतंकवादी गतिविधि हुई थी उसमें जो लड़के पकड़े गए हैं, उनका कहना है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के उपदेशों से बहुत प्रभावित रहे हैं। तो अब इस पर मामला चल रहा है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। एक मद्रास हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया है दोस्तों, एक किताब के को लेकर के, उसके बारे में मैं इससे पहले चर्चा कर रहा हूं। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको लेकर के हम लोग कभी आगे चलकर बात करेंगे। विंबलडन की खबर आप लोगों ने सुनी ही है, तो अब सिविल सर्विस में तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो स्टेट सिविल सर्विस है और जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें ये थोड़ा सा मायने रखता है कि विंबलडन चैंपियन कौन है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों न्यूज के बारे में इतना ही, न्यूज़पेपर्स के काफी क्लिपिंग्स मैं आज आप लोगों को नॉलेज सेंटर पर उपलब्ध करा रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। उनकी डिटेल्स बनाने की स्थिति बताने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं, इसलिए दोस्तों अब मैं सीधे सीधे आता हूं ईमेल पर। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने जानना चाहा है कि 15 दिन की जो क्लासेस होती हैं उसकी लैंग्वेज क्या होती है, तो मैं यही कह सकता हूं कि जो मेरी अभी लैंग्वेज है वही 15 दिन की क्लासेस की लैंग्वेज होती है। नो डाउट अगर हम मीडियम मानेंगे तो वो हिंदी मीडियम होती है, लेकिन हमारे यहां इंग्लिश मीडियम के भी बहुत से स्टूडेंट आते हैं, लेकिन उनमें इतनी तो समझ होनी चाहिए हिंदी की कि वो सामान्य तौर पर हिंदी को समझ लें, क्योंकि यहां कंटेंट पर बात नहीं होती है, यहां अंडरस्टैंडिंग पर बात होती है। तो इसीलिए स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते कि वो बोलचाल की हिंदी समझ। अगर आप फिल्म देख सकते हैं समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 15 दिन की क्लासेस को भी देख सकते हैं समझ सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट को इस बात की इजाजत होती है कि अगर उसको कोई पर्टिकुलर टर्म्स समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो अपने बगल के स्टूडेंट से पूछ ले, या फिर वो मुझसे उसके बारे में पूछ सकता है, ताकि उनको कोई उसमें कंफ्यूजन न रह जाए। दोस्तों कुछ स्टूडेंट के ये भी आए हैं कि जो स्टूडेंट क्लास में आते हैं अटेंड करते हैं, तो उनको एक साल तक लगभग 50 स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उनका सवाल यह था कि क्या इसके लिए अलग से फीस होती है? नॉट एट ऑल, इसकी अलग से कोई फीस नहीं है। जो क्लास जो आप अटेंड कर रहे हैं उसी के पैकेज का ये हिस्सा है। जैसे क्लास के फीस में ही आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग टी शामिल है, ठीक उसी तरह से ये 50 आरडीओ भी उसी के अंदर शामिल हैं। उसके लिए कोई आपको अलग से पेमेंट करना नहीं होता है। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मेल आए हैं, तो मैं थोड़े से करेक्शंस आपको बता दूं जो बोलने के दौरान शायद इस तरह से हो गए होंगे। एक तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य की संख्या होती है वो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या का ही 15% होती है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे मैंने अगर कुछ वो बोल दिया हो तो। दूसरा ये है कि मैंने बात बात में रोनाल्डो कह दिया था, वो बेसिकली मेसी है जो अभी जो गोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि रोनाल्डो की भी बात होती रहती तो बोलने के दौरान मेरे मुंह से रोनाल्डो निकल गया होगा, वो बेसिकली मेसी हैं। और जिन स्टूडेंट ने इधर ध्यान दिलाया है उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। तो मित्रों, सभी मेल लिखने वाले अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और इनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं, ब्रिजेश मिश्रा जो नासिक महाराष्ट्र से हैं, अमित कुमार इलाहाबाद से, संदीप कुमार लखनऊ से, अखिलेश कुमार बेतिया से, मनप्रीत कौर, अनिल राठौर ग्वालियर से, कीर्ति कुमारी, संजीव हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, राजकुमार जाट सीकर राजस्थान से, नरेंद्र प्रसाद निराला दरभंगा बिहार से, और चंद्रा अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।